सृष्टि सुंदर सरल रहे LITVN के सौजन्य से अर्पा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023।
चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो।
अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममतामयी महिलाओं को सम्मान ओजस्विनी सम्मान।
समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे।
नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान नव्य सम्मान।
नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में।
आज कुछ बातें नव्य सम्मान से सम्मानित शास्त्रीय संगीत कलाकार श्रुति प्रभला के साथ। इनसे बातचीत कर रही है मातृका।
संगीत से ही साज है और आवाज है, संगीत से ही अंत और आगाज है। माँ पिता की डांट, माँ की लोरी में संगीत है, बच्चे के खिलखिलाने व रोने में संगीत है। संगीत से ही जिंदगी में हर स्वाद व नवरस है। यानी कि संगीत हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज की हमारी नव्या भी संगीत से ही जुड़ी हुई है। तो आइए बातचीत करते हैं हमारी आज की नव्या श्रुति प्रभला से और शुरुआत करते हैं उनके परिचय से।
मेरा नाम श्रुति प्रभला है और मैं फिलहाल उस्ताद वसीम अहमद खान साहब आगरा घराने के उनकी शागिर्द हूँ। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हूँ पर साथ ही साथ मैं उपशास्त्रीय गायन में अपनी प्रस्तुतियाँ भी देती रहती हूँ। और चैती, ठुमरी, कजरी, होरी जो कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें कम सुनी जाती हैं उन्हें लोगों से परिचित कराने की कोशिश में लगी हूँ।
आपने म्यूज़िक स्टार्ट कब से किया?
संगीत वैसे तो मैं तालीम जो लेना शुरू की हूँ वो पिछले 6-7 साल से ले रही हूँ, पर उसके पहले जब मैं क्लास 9th में थी तो ऐसे नॉर्मली वहाँ जब मैं NTPC में रहा करती थी तो वॉइस ऑफ सीपत हुआ, उसमें मैं विनर हुई और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करना शुरू किए कि मैं संगीत में जा सकती हूँ। पर जैसा कि हर माँ बाप की ये सोच होती है कि बच्चे जो भी हैं वो हमेशा अच्छा ही चूज़ करें या अपने लाइफ में स्ट्रगल ना करें जैसा कि पेरेंट्स करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझे ऑब्जर्व करते थे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ और इसलिए हमेशा मेरे सामने एक टास्क रखते थे कि तुम ये टास्क पूरा करोगी तो तुमको आगे हम जाने देंगे। वैसे ही वॉइस ऑफ सीपर जब मैं जीती तो मेरे सामने टास्क था कि मुझे स्पीक मेकिंग का जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिले। और भगवान की दया से क्लास 11th में जब मैं आई तो गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप स्कीम जो कि स्पीक मेकिंग के द्वारा होता है जिसमें भारत भर के 10 बच्चे चयनित होते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। छत्तीसगढ़ से मैं सिलेक्ट हुई और एक महीने के लिए मैं कोलकाता गई और जब वहाँ से सीख के वापस आई तो उस्ताद वसीम अहमद खान साहब मुझे अपनी शागिर्दी में ले चुके थे, तो तब से अभी तक मैं उनकी शागिर्द हूँ।
आपका म्यूज़िक जो तालीम स्टार्ट हुई वो कब से स्टार्ट हुई और कैसा अनुभव रहा?
तालीम जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरी तालीम 2019 से शुरू हुई, विधिवत तालीम जिसको कहा जाएगा। और अनुभव ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है जितने भी बच्चे संगीत में, मतलब संगीत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम स्वयं संगीत मुच्यते, तीनों ही कला के क्षेत्र में जो बच्चे जाते हैं उनके पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि कभी भी ये ना समझें कि बच्चे यदि संगीत के क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो अपने पढ़ाई में वीक हो जाएंगे। जो बच्चे संगीत के क्षेत्र में जाते हैं वो पढ़ाई में और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। और चूँकि संगीत जो है ना वो सर्वांगीण विकास का काम करता है और वो एक संस्कार है, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी काम करता है। आपको चार लोग के सामने कैसे बैठना है, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें वो डेवलप करता है क्योंकि संगीत अपने आप में एक संस्कार है। जैसा मैंने आपको कहा परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो कैसे परफॉर्म करना है ये संस्कार लोगों को पहले दिया जाता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है, जो मेरा अनुभव रहा है कि आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा संगीत के कारण मेरे पढ़ाई में कोई भी लैग हो रहा है या मैं अपने शिक्षा में पीछे होती चली जा रही हूँ क्योंकि मैं संगीत में हूँ, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं तो कहूँगी कि सारे पेरेंट्स को किसी ना किसी एक कला के क्षेत्र में अपने बच्चों को डालना ही चाहिए ताकि वो अपने लिए भी अपना समय निकाल सके और उनके अंदर जो कला है उसको बाहर निकाल सके।
आपने ऐसा क्यों कहा कि संगीत जो है वो पढ़ाई के प्रति फोकस जो है वो बढ़ा देता है?
क्योंकि संगीत एक साधना का काम है और जब तक साधना नहीं होती तब तक आप संगीत हासिल नहीं कर सकते। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में निमोनिक्स के थ्रू, आप शॉर्टकट्स के थ्रू, शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू आपने पढ़ाई कर सकते हैं, पर संगीत में कोई शॉर्टकट और शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। आपको पेशेंस इज मस्ट, और जब तक पेशेंस नहीं रहेगा आप संगीत सीख नहीं सकते। पेशेंस के लिए कंसंट्रेशन इज मस्ट, और कंसंट्रेशन जब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी।
संगीत की तालीम से पहले हम आपकी प्राइमरी पढ़ाई की बात करते हैं कि वो कहाँ से रहा और कैसा रहा।
मेरी प्राइमरी पढ़ाई बाल भारती पब्लिक स्कूल से हुई है जो कि NTPC सीपत में है, और मैं क्लास 4th से वहाँ गई। 3rd तक तो मैं DAV स्कूल में पढ़ी हूँ जो कि बिलासपुर में है। बाल भारती में भी जो मेरा पढ़ाई का अनुभव रहा, जो मेरा करियर था, वो सारे टीचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए। और जैसा कि मैंने कहा, 9th से ही सबको पता चलना शुरू हुआ कि मैं संगीत में हूँ, तो टीचर्स का भी कोऑर्डिनेशन बहुत था, और तभी टीचर के सपोर्ट के कारण ही मैं संगीत में अपने आ पाई। और आज जो कुछ भी मैं संगीत में कर पा रही हूँ उसमें बाल भारती का ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स के साथ में।
12वीं के बाद आपकी पढ़ाई?
12वीं के बाद मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें मैं बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा। और अभी ग्रेजुएशन में हूँ।
माता पिता दोनों में से कोई भी संगीत से संबंधित है?
मेरे पैटर्नल साइड में सभी संगीत के अच्छे काफ़ी जानकार रहे हैं। जैसे मेरे पिताजी के नानी जो है वो 16 साल कर्नाटक संगीत ऑफिशियली उन्हें सीखा है। मेरी दादी ऑफकोर्स उनकी मम्मी से ही सीखती आई हैं, पर ऐसा विधिवत उन्हें तालीम नहीं ली। लेकिन मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं। इधर मेरे मैटरनल साइड में मेरे नाना जी कर्नाटक संगीत में घटम और मृदंगम बजाया करते थे। मेरी माँ बचपन में सीखी, पर जैसा कि घर में होता है ना, सब गाने वाले हो तो श्रोता भी चाहिए, तो मेरी माँ श्रोता कैटेगरी में है।
अच्छा, ये कहा जा सकता है कि परिवार से ही आपको संगीत मिला है?
हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, पर पूर्णतः नहीं। घरानेदार संगीत नहीं है मेरा, और इसीलिए ज़्यादा मेहनत करनी है
जी। संगीत सीखना ज़रूरी क्यों है? हम वो गाते हुए भी सीख सकते हैं या सुनते हुए भी सीख सकते हैं, तो आप बहुत शुरुआत से आप संगीत की तालीम ले रही हैं, ये बताइए कि संगीत इतना ज़रूरी क्यों है?
संगीत सीखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने क ख ग घ या ABCD उनको नहीं पढ़ाया, हमने सडनली उनको एक बुक दे दिया और कहा कि आप इसको याद करके आए, उनके पेरेंट्स उनको मार मार के याद करा देंगे, मान लीजिए वो आके बोल देंगे, और बाद में आपने उनको पूछा कि इसका ग्रामर क्या है, इसमें नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्हें सीखा ही नहीं, उनको तो उनके पेरेंट्स ने याद कराया। सिमिलरली आप जब संगीत कोई भी गाना गाते हैं तो आप उसको सुन सुन के याद कर लेते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा सुर कहाँ लग रहा है, और वो सुर जानना, ABCD क ख ग घ जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सारे गामा की शिक्षा लेना आपको बहुत ज़रूरी है।
आप अभी आखिरी साल में हैं अपने ग्रेजुएशन के, वहाँ आपको अलग अलग राग सिखाए जाते हैं, आपको कौन सा राग बहुत पसंद है, और अपने कॉलेज के बारे में सबसे पहले बताइए, फिर उसके बाद राग के बारे में, और आप क्या क्या सीखती हैं उसके बारे में।
भातखंडे संगीत महाविद्यालय मेरा कॉलेज है, और डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती जी और ममता चक्रवर्ती, ये काफ़ी सालों से वो कॉलेज चलाते आ रहे हैं और वही हमारे प्रोफेसर हैं वहाँ पे। और राग संगीत ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत में राग संगीत ही सिखाया जाता है, और मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई एक राग काफ़ी अच्छा है और कोई एक दूसरा राग बुरा है। हर राग अपने समय के हिसाब से आपका मूड बनाता है। जैसे मैं भैरव की यदि बात करूं, तो जब सूरज उगता है तब भैरव का उद्गम होता है, और जब भैरव आप सुनेंगे तो आपको अपने आप में ये अनुभूति होगी कि सूरज आपके सामने उग रहा है। भोर का राग भैरव को माना जाता है। उसी तरह हम अगर इवनिंग के एक्सटेंट में जाएंगे तो राग यमन है, जो कि अगेन बहुत हैप्पी राग है, और आप उसका पहला ही सुर अगर यमन का हम लगाएं तो ऐसा लगेगा कि बस इतने खुशी की अनुभूति हमको होती है कि वो, मैंने कहा ना, राग आपको मूड के हिसाब से चलता है। तो जैसे राग ललित है वो विंडो के हिसाब से रहता है, मॉर्निंग विंडो के हिसाब से, कि जब जो रात का अंधेरा है वो छट चुका है और सूरज अभी उगा नहीं है, वो जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलेंगे, उस वक्त राग ललित गाया जाता है। तो सब राग के अपने अलग मूड होते हैं, अलग समय होता है, और यही हमको शिक्षा दी जाती है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में।
आपका पसंदीदा राग कौन सा है?
मेरा पर्सनली पूछेंगे तो राग यमन काफ़ी पसंद है, पर मैं भैरव और यमन, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी वही दोनों का दिया, क्योंकि भैरव और यमन दोनों ही मुझे अपने अपने जगह में काफ़ी पसंद है।
इन 5 सालों में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे?
काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं कोलकाता भी जाती हूँ संगीत रिसर्च अकेडमी, क्योंकि वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं और मेरी वहाँ तालीम होती है, और मैं बिलासपुर में भी रहती हूँ, और साथ में मैं चूँकि स्पीकमेकर की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं संगीत के इसमें। पर मेरा सबसे यही कहना है कि जैसा मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स पहले मानते नहीं हैं आपकी बात को, और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पेरेंट्स को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप वो कर सकते हैं, आप सक्षम है करने के लिए। और जैसा कि सब घर में होता है वैसे मेरे घर में भी होता था कि आपके और कोई नहीं आपको बोलेगा सामने से आके कि तुम ये करियर क्यों चूज कर रही हो, आपके अपने ही परिवार में आपके नज़दीकी लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको टोकते हैं, जो बातें आपको बुरी लगती हैं। तो मेरा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब मैं करियर अपना शुरू की, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं कहूँगी, पर मुझे 2 कमेंट्स ऐसे आए जो मेरे को लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। मैं कहूँगी कि संगीत ही है जो आज आप सबको अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देता है, आप संगीत के थ्रू ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी कला नहीं, ये तो संगीत की बात है, इवन कथक हो, भरतनाट्यम हो, मृदंग वादन हो, तबला वादन हो, कोई भी कला हो, कोई भी कला कभी भी आपको कोई गलत चीज़ करने के लिए आगे नहीं बढ़ाती है, बशर्ते कि आप उसको सही ढंग से और सही मायने में करें। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप अपना काम करते जाओ, साइलेंस स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, आप शांत रहें, अपना काम करते जाए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब आपके सपोर्ट में हो जाते हैं, जैसे मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था जब मैं करियर शुरू की, और आज सब मेरे सपोर्ट में हैं।
जैसे आप शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं, शास्त्रीय संगीत में ऐसा खास क्या है जो अभी के संगीत में हमको सुनने को नहीं मिलता?
शास्त्रीय संगीत आपको शास्त्रीयता के साथ संस्कार भी सिखाता है, और आज के संगीत में आप शब्दावली समझें या वो गाने का संयोजन समझें, आज भी कई गाने ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, पर गाने का संयोजन कई मामले में पहले जैसा नहीं है। जो शास्त्रीयता के हिसाब से जैसे लता जी हैं, आशा जी हैं, रफ़ी साहब हैं, इनके गानों में हुआ करता था, वो आज नहीं मिलेगा आपको।
अभी आपने कहा कि आप ठुमरी और ऐसे गीतों को और गायन शैली को आप लेकर आगे जाना चाहती हैं जो ख़त्म होने को आए, ये विचार कैसे आया कि इस शैली को आपको अपनाना है?
जैसे कि फिल्मी गाने सब सुनते हैं, बहुत मज़े से सुनते हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा अनुभूति हमको खुशी की हमारे उपशास्त्रीय संगीत में होती है, और मैं चाहती हूँ कि लोग वो नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं तो वो भी सुने, उनको वो मौका मिले सुनने का। और जैसा कि मैंने कहा ना कि शास्त्रीय संगीत राग आबद्ध होता है, वैसे ही फिल्म संगीत और उपशास्त्रीय संगीत भी रागों में आबद्ध होता है। तो आप राग संगीत सीखें और उसके बाद राग आपके मूड को बनाते हैं, तो उसके थ्रू यदि आप उपशास्त्रीय भी सीखेंगे तो आपका वैसा ही मूड बनेगा जैसा फिल्मी संगीत में बनता है।
तो आप अंतर समझाइए शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत।
शास्त्रीय संगीत पूर्णतः राग आबद्ध होता है, और आपको मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि शास्त्रीय संगीत बशर्ते गाना आसान है उपशास्त्रीय संगीत के।
अच्छा।
क्योंकि शास्त्रीय संगीत में आपको 1 से 1.5 घंटे मिलते हैं एक राग को स्थापित करने के लिए, और उपशास्त्रीय संगीत में आपको 3 से 4 मिनट मिलते हैं वो पूरे राग को समझाने में।
अच्छा।
तो वो ज़्यादा कठिन हो जाता है।
ठीक, तो दोनों का छोटा छोटा एग्जाम्पल मिल सकता है हमको?
तो जैसा मैंने कहा आपको कि राग यमन मेरा काफ़ी पसंदीदा राग है, तो मैं छोटी झलक सुनाती हूँ आपको, और उसमें मैं पहले ही बता दूँ कि जो मैं राग विस्तार करूँगी उसमें जितना टाइम लगेगा, और उपशास्त्रीय में जो विस्तार करूंगी आपको अंतर अपने आप समझ में आने लगेगा।
ठीक है,
क्या? तो मैं पहले शुरू करती हूँ शास्त्रीय से और राग यमन में सुनाऊंगी, और उसके बाद में उपशास्त्रीय में आपको एक चैती सुनाऊंगी क्योंकि चैत मास चल रहा है।
जी।
आ ये परिचय है राग यमन का और मैं एक विलंबित की सिर्फ बंदिश आपको सुनाती हूँ। आज मोरे आए पेरवा करो छोटी सी राग यमन की जिंदगी। अब मैं आपको उपशास्त्री सुना देती हूँ। उपशास्त्री में एक बहुत फेमस गाना है राग मिश्र पहाड़ी में हुस्न पहाड़ों का, और उसी से मिलता जुलता है चैती जो कि मैं गाऊंगी। दोनों ही मैं इसलिए आपको दोनों बता रही हूँ क्योंकि फिल्मी गाने ज्यादा कनेक्ट करते होंगे, वो गाना ज्यादा आप सुने होंगे बशर्ते चैती के। तो जब आप उसको सुनेंगे और चैती सुनेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की रुचि चैती सुनने में ज्यादा बढ़ जाएगी।
हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का चैत मास बोले रे कोवेलिया हो रामा, चैत मास बोले रे कोवेलिया हो रामा, चैतर चुंदरिया चैत मास बोले रे कोवेलिया, कोहका कर कारी रे कोवेलिया, कोहका कोहक कर कारी रे कोवेलिया, हुक उठत मोरे मनवा हो रामा, हुक उठत मोरे मनवा हो रामा, मोरे अंगनवा में चैत मास चुंदरी रंग है हो रामा, चैतर चुंदरिया चैत मास चुंदरी।
अब जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस गाती जाए
थैंक यू
और रुके ना। अभी के संगीत में आते हैं कि अभी के संगीत में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का संयोजन हो रहा है या किस प्रकार के गाने बन रहे हैं ऐसे गाने, क्योंकि कहा तो ऐसा जाता है कि आजकल के संगीत और पुराने जो संगीत है और पुराना जो म्यूज़िक है उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है, लेकिन अगर आपके हिसाब से कहा जाए तो कौन सा संगीत अभी के समय में आप पसंद करती हैं?
जहाँ तक मेरे पसंद की बात है तो आज भी कई ऐसे गाने हैं जो कि काफ़ी अच्छे कंपोज हो रहे हैं, स्पेशली संजय लीला भंसाली की जितनी मूवी होती हैं उनके जितने गाने होते हैं वो एट पार होते हैं, मतलब आज भी वो संगीत एग्जिस्ट करता है। अब जो डिफरेंस की बात है कि कैसे संयोजन होते हैं, तो हमारे यहाँ ठुमरियों में हम कहते हैं कि धनाक्षरी और घनाक्षरी दो प्रकार की ठुमरियाँ होती हैं। धनाक्षरी ठुमरी वो होती है जो कि विच इज रिच इन म्यूजिक रादर देन वर्ड्स, और घनाक्षरी इज द वन विच इज रिच इन वर्ड्स एंड रादर देन म्यूजिक। तो मतलब शब्द ऐसे संयोजित होते हैं घनाक्षरी में जो कि आपको शब्द ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बंदिश ही ठुमरी होती है, वो शब्द ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, नॉट बंदिश। पर धनाक्षरी जो है वो राग उसका इतना सुंदर बनाया जाता है कि शब्द भले ही आप ना देखें पर उसका जो राग संयोजन होता है वो काफी अच्छा होता है। तो आज के डेट पे यही हो रहा है, पहले घनाक्षरी और धनाक्षरी का सम्मिलित रूप हमको सुनने को मिलता था कि राग वो जो संगीत का संयोजन है, जो म्यूजिक बन रहा है वो भी इतना सुंदर होता था और एट द सेम टाइम शब्द भी इतने अच्छे होते थे कि सब सुन सकते थे। आज के डेट पे कई गाने ऐसे हैं जिसके शब्द हो सकते हैं कई मामले में सही ना हो, जो बच्चे ना सुन सकें क्योंकि स्लैंग्स यूज होते हैं, और सारे गाने नहीं, कुछ गाने मैं कह रही हूँ। और साथ में अगेन वो अगर घनाक्षरी है मतलब शब्द ज़्यादा है, जैसे कि हम रैप म्यूजिक बोलते हैं कि रैप में शब्द ही है लेकिन म्यूजिक नहीं है, और अगर जिसमें म्यूजिक है तो फिर उसमें शब्द नहीं है। तो दोनों का सम्मिलित रूप आज हमको सुनने को नहीं मिलता जो कि पुराने जमाने में मिलता था।
अभी के सिंगर्स में आपको जो बहुत पसंद है, ऐसा कोई सिंगर आपको लगता है कि हाँ मैं इनको सुनना पसंद करती हूँ?
अगेन संजय लीला भंसाली का एक वो है, एल्बम है उनका, और सुकून नाम है एल्बम का। वो एल्बम में अधिकतर जैसे शिल्पा राव है, शैल हाड़ा है, अरिजीत सिंह कई कुछ जगहों पे, और ऐसे उनके एल्बम्स में जितने गाने हैं वो गाने मुझे लगते हैं कि मैं आज भी सुन सकती हूँ कुछ गाने।
अच्छा, कोई गाना कुछ सेकंड्स के लिए गुनगुना कर बता दीजिए।
तो सुकून एल्बम का तो नहीं गुनगुनाऊंगी मैं, पर जो मेरा पसंदीदा है जो तलत महमूद साहब का गाना है जो राग बागेश्री में है, मैं वो थोड़ा सा सुनाऊंगी।
सामा गामा दानी दाम हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया।
जब आप गाना शुरू की तो उस समय आपको लगा नहीं कि इतने सारे जो म्यूजिक टैलेंट शोज होते हैं तो उसमें कभी आजमाया जाए अपने आप को?
मैं शुरू से ही मेरा एक मोटिव था कि मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो मैं एकेडमिकली आगे बढ़ूंगी। चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स है, म्यूजिक तो परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स रहेगा ही, पर मुझे क्लासेस ज़्यादा पसंद है रैदर देन मासेस।
अच्छा,
तो मैं ऐसे संगीत गाऊँ जो लोग सुनने में उनको बहुत अच्छा लगेगा पर शायद उनको सुनने का मौका ना मिला। और रियलिटी शोज में जनरली हम बॉलीवुड के गाने गाते हैं, बॉलीवुड के गाने अगेन आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देते हैं, पर मेरा ऐसा सोच था कि मैं एकेडमिकली ही आगे बढ़ूंगी, पहले अपने आप को एजुकेट करूंगी संगीत से और उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगी।
आपका आखिरी साल है, इसके बाद आपने म्यूजिक के लिए क्या करने का सोचा है?
मेरा एक प्रोजेक्ट है, क्लास 11th में ही मैंने बनाया था, जिसको ISA अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। म्यूजिक थेरेपी पे था वो, कि मतलब 5 ऐसे डिजीजेस या ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि संगीत के थ्रू, राग थेरेपी के थ्रू ठीक किए जा सकते हैं। उसी के लिए मैं आगे अपनी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ और म्यूजिक थेरेपी में ही कोई काम करने का सोचा।
इसमें हम जान सकते हैं कि वो कौन कौन से 5 रोग हैं जो संगीत के माध्यम से और राग थेरेपी से वो ठीक हो सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संगीत किसी सर्जरी से आपको ठीक नहीं कर बचा नहीं सकता है। मतलब अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, यू हैव टू गो थ्रू इट, वो संगीत नहीं रोकेगा, पर जो दर्द उसके बाद होता है आपको, उसको वो हील करने में ज़्यादा मदद करेगा आपकी। जैसे न्यूरो सर्जरीज होती हैं, तो उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड में संगीत सुनाया जाता है जिससे वो काम डाउन करे। वैसे ही हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, उनके अटैक के बाद में उनको कहा जाता है कि संगीत की थेरेपी वो ले, जो कि उनके बीपी को और ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करेगा। और जब मानसिक तौर पे आप बीमार रहते हैं, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सबसे संगीत आपको बाहर निकालता है। तो इन्हीं पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। और जैसा कि राग भैरवी है, वो आपको एंजाइटी के से बाहर निकलने में मदद करता है। वहीं राग यमन भी है, जैसा कि मैंने कहा हैप्पी राग है। और अगर आप राग यमन सुनते हैं, राग मेघ मल्हार सुनते हैं, कुछ राग ऐसे हैं जो आपको आपके एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन को और बढ़ाते हैं, जो हैप्पी हार्मोन है उसको वो सिक्रीट करते हैं कंटिन्यूसली, जब आपको वो आनंद की अनुभूति होती है उसको सुन के, तो आपका डिप्रेशन कम होता है। तो कुछ ऐसे डिजीज थे जो मैंने उनमें। संगीत पेन किलर का काम कर सकता है। आपको पेन किलर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपको दर्द हो रहा है, तो आपका ध्यान लगातार उसी एरिया पे जाता रहता है कि हमको दर्द हो रहा है। संगीत आपको काम डाउन कर देता है, और जब आप संगीत को सुनते हैं तो वो आपके ध्यान को वहाँ से हटा देता है,
और ध्यान जो है वो संगीत में
लगता है। दैट इज़ वॉट पेन किलर्स ऑल्सो डू, कि वो आपका ऐसा मैसेज डालता है कि आपको वो आएगा ही नहीं कि आपको दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं ठीक करता है, वो आपको मैसेज भेजना कम कर देता है कि आपको दर्द हो रहा है। तो आपको मेडिसिन से अच्छा है कि संगीत थेरेपी कर ले,
सेंस कम कर देता है।
बिल्कुल
ठीक। और इसके साथ साथ आप कोई भी एक बात कहना चाहेंगी जो आप उन तक पहुंचाना चाहती हैं?
मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे मन में हमेशा रही है, मैं यही सबको कहूंगी कि कभी भी पेरेंट्स ये ना समझें कि क्लास 11th में आ गया है बच्चा, 12th में आ गया है, 10th में आ गया है, तो वो संगीत या कोई भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वो करेगा तो उसकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा सोचना बंद करें, उनको उनके को-करिकुलर में स्ट्रांग होने दें, पढ़ाई अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। संगीत में ही नहीं, को-करिकुलर में, इवन स्पोर्ट्स में, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं, फोटोग्राफी है, जो भी उनको इंटरेस्ट है, जो उनके हॉबी है, उनको वो करने दें तो उनके पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा ध्यान लगेगा। और संगीत के लिए मैं ये कहूँगी कि सब बच्चों को, अगर जो बच्चों को गाने में इंटरेस्ट है, तो आज के डेट पे कैराओके अच्छा है तो बुरा भी काम कर रहा है, कि लोग कैराओके में गाने तो आ जाते हैं पर वो गाने सुनते नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप गाना सुनें, और अच्छा गाना चाहते हैं तो शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखें। जैसा हम सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ABCD सीखते हैं, वैसा ही ABCD शास्त्रीय संगीत का बेस है।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रही हैं म्यूज़िक थेरेपी के बारे में और मेडिकल के क्षेत्र में संगीत को लाने के लिए, वो बहुत जल्द ही हमको देखने और सुनने को मिले, और हमारे शहर में ही सुनने को मिले। और आपकी आगे की शिक्षा के लिए और संगीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू।
औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को,
तोड़े रूढ़ी की साजिश जो रची हमें लड़वाने को,
संग शर्म के बुद्धि
भर जाए हुंकार के,
भर जाए हुंकार के।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।